नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। इस कॉटिली की सिस्टम्स एनालिसिस एंड डिजाइन माइंड टैप कोर्स लिस्ट सूचना प्रणालियों के विकास को समझाने वाली व्यावहारिक पाठ्य पुस्तक है। इसका केंद्र केवल प्रोग्रामिंग या तकनीकी ढांचे नहीं, बल्कि उस व्यवस्थित प्रक्रिया पर है जिसके जरिए किसी संगठन की समस्या पहचानी जाती है, आवश्यकताएं समझी जाती हैं, समाधान डिजाइन होता है और नई प्रणाली लागू की जाती है। पुस्तक सिस्टम्स डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को एक मार्गदर्शक ढांचे की तरह रखती है, ताकि विद्यार्थी योजना, विश्लेषण, डिजाइन, कार्यान्वयन और समर्थन के बीच संबंध देख सकें। इसमें व्यावसायिक जरूरतों, उपयोगकर्ता अपेक्षाओं, डेटा, प्रक्रियाओं और तकनीकी विकल्पों को साथ लेकर चलने पर बल है। क्लाउड कंप्यूटिंग और मोबाइल अनुप्रयोगों जैसे समकालीन संदर्भ भी इसे पारंपरिक विश्लेषण की पुस्तक भर नहीं रहने देते। माइंडटैप से जुड़ा इसका शिक्षण ढांचा अभ्यास, असाइनमेंट और समस्या समाधान पर केंद्रित है। इसलिए इसका उद्देश्य पाठक को शब्दावली याद कराना नहीं, बल्कि बदलती व्यावसायिक स्थितियों में तर्कसंगत, उपयोगकर्ता केंद्रित और नियंत्रित सिस्टम विकास का आधार देना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, सिस्टम्स डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को पूरे विकास कार्य का अनुशासन बनाना। पुस्तक का मुख्य संगठनात्मक ढांचा सिस्टम्स डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। यह विकास को एक ही बार में बनने वाला तकनीकी उत्पाद नहीं मानती, बल्कि परस्पर जुड़ी अवस्थाओं वाली प्रक्रिया के रूप में रखती है। योजना में समस्या, उद्देश्य, दायरा, संसाधन और व्यवहार्यता पर विचार होता है। विश्लेषण में वर्तमान कार्यप्रणाली तथा उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को समझा जाता है। डिजाइन में समाधान की संरचना तय होती है, जबकि कार्यान्वयन में निर्माण, परीक्षण, रूपांतरण और उपयोगकर्ता तैयारी जैसे कार्य आते हैं। बात का संचालन और रखरखाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तविक उपयोग के दौरान कमियां और नई जरूरतें सामने आती हैं। इस क्रम का व्यावहारिक लाभ जवाबदेही है। हर अवस्था में निर्णय के आधार, अपेक्षित परिणाम और आगे बढ़ने की शर्तें अधिक स्पष्ट रहती हैं। फिर भी पुस्तक का दृष्टिकोण इसे कठोर रेखीय नियम की तरह नहीं प्रस्तुत करता। वास्तविक परियोजनाओं में नई जानकारी मिलने पर पहले के निष्कर्षों की समीक्षा करनी पड़ सकती है। इसलिए जीवन चक्र का मूल्य नियंत्रण और संवाद देने में है, न कि परिवर्तन को रोकने में। विद्यार्थी के लिए यह समझ विशेष उपयोगी है कि किसी अच्छी प्रणाली की गुणवत्ता केवल अंतिम स्क्रीन या रिपोर्ट से नहीं, आरंभिक समस्या परिभाषा और निरंतर निर्णय अनुशासन से भी तय होती है। दूसरा, व्यावसायिक समस्या को स्पष्ट आवश्यकताओं और व्यवहार्यता में बदलना। सिस्टम विश्लेषण का सबसे कठिन भाग अक्सर तकनीक चुनना नहीं, सही समस्या की पहचान करना होता है। पुस्तक इसीलिए व्यावसायिक संदर्भ, हितधारकों और उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को समझने की प्रक्रिया पर जोर देती है। कोई संस्था तेज सेवा, कम लागत, बेहतर नियंत्रण, अधिक विश्वसनीय जानकारी या नियम की अनुपालन चाह सकती है। इन लक्ष्यों को अस्पष्ट इच्छा के रूप में छोड़ देने से परियोजना का दायरा फैलता है और समाधान उपयोगी नहीं बनता। विश्लेषक को यह अलग करना पड़ता है कि प्रणाली को कौन से काम करने हैं, कौन सी सूचनाएं लेनी और देनी है, किन नियमों का पालन होना है और प्रदर्शन, सुरक्षा या उपलब्धता जैसी गैर कार्यात्मक अपेक्षाएं क्या हैं। व्यवहार्यता का विचार इसी चरण को आर्थिक और संचालनात्मक वास्तविकता से जोड़ता है। प्रस्तावित बदलाव तकनीकी रूप से संभव होने पर भी लागत, समय, संगठनात्मक क्षमता या उपयोगकर्ता स्वीकृति के कारण अनुपयुक्त हो सकता है। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश है कि विश्लेषक केवल मांगों को लिखने वाला व्यक्ति नहीं है, वह प्रश्न पूछकर, प्रक्रियाओं का निरीक्षण कर और विकल्पों की तुलना कर निर्णय योग्य जानकारी तैयार करता है। इस काम में उपयोगकर्ताओं की भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि वे दैनिक कार्य की बारीकियों और अपवाद स्थितियों को जानते हैं। स्पष्ट आवश्यकताएं बात के डिजाइन, परीक्षण और स्वीकृति के लिए साझा कसौटी भी बनती हैं। तीसरा, मॉडलिंग के जरिए प्रक्रियाओं, डेटा और उपयोगकर्ता संपर्क को दृश्य बनाना। पुस्तक में विश्लेषण और डिजाइन को समझने के लिए मॉडलिंग का महत्व केंद्रीय है। जटिल संगठनात्मक कामकाज को केवल लंबे वर्णन में रखने पर यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि जानकारी कहां से आती है, किस प्रक्रिया से गुजरती है, किस नियम के तहत बदलती है और किसे परिणाम मिलता है। प्रक्रिया मॉडल कार्यप्रवाह और निर्णय बिंदुओं को स्पष्ट करते हैं। डेटा मॉडल यह समझने में सहायता करते हैं कि कौन सी इकाइयां महत्वपूर्ण हैं, उनके गुण क्या हैं और उनके बीच संबंध कैसे हैं। उपयोगकर्ता इंटरफेस तथा आउटपुट डिजाइन का विचार इस बात पर ध्यान दिलाता है कि तकनीकी रूप से सही प्रणाली भी उपयोग में असुविधाजनक होने पर असफल हो सकती है। मॉडल इसलिए केवल दस्तावेज नहीं है, वे उपयोगकर्ता, प्रबंधक, विश्लेषक और विकास दल के बीच संवाद की साझा भाषा बनते हैं। इनके माध्यम से विरोधाभासी धारणाएं निर्माण शुरू होने से पहले पकड़ी जा सकती हैं। पुस्तक का दृष्टिकोण तार्किक और भौतिक डिजाइन के अंतर को भी उपयोगी बनाता है। पहले यह तय किया जाता है कि प्रणाली को क्या करना है, बाद में यह कि उसे किस मंच, डेटाबेस, नेटवर्क या सॉफ्टवेयर संरचना से किया जाएगा। यह विभाजन तकनीकी विकल्प बदलने पर भी मूल व्यावसायिक जरूरत को स्थिर रखता है। साथ ही मॉडल की सीमा भी समझनी चाहिए, वह वास्तविकता का चयनित प्रतिनिधित्व है, इसलिए उसे हितधारकों से जांचना और जरूरत पड़ने पर संशोधित करना अनिवार्य है। चौथा, परंपरागत और चुस्त विकास विधियों के बीच परिस्थिति आधारित चयन। सिस्टम विकास के लिए एक ही विधि हर परियोजना में उपयुक्त नहीं होती। पुस्तक योजनाबद्ध विकास पद्धतियों के साथ चुस्त और पुनरावृत्त दृष्टिकोणों की प्रासंगिकता समझने का आधार देती है, जहां आवश्यकताएं अपेक्षाकृत स्थिर हों, अनुमोदन औपचारिक हो और दस्तावेजी नियंत्रण महत्वपूर्ण हो, वहां चरणबद्ध योजना जोखिम और दायरे को संभालने में सहायक हो सकती है। दूसरी ओर, जब उपयोगकर्ता जरूरतें जल्दी बदल रही हो या समाधान को बार बार दिखाकर सुधारना जरूरी हो, तब छोटे चक्रों में काम करना उपयोगी हो सकता है। चुस्त कार्यप्रणाली का अर्थ योजना छोड़ देना नहीं है, उसका अर्थ है छोटे परिणाम, सतत उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया, प्राथमिकताओं की पुनर्समीक्षा और काम करने वाले समाधान को जल्दी परखना। इसी तरह प्रोटोटाइप उपयोगकर्ता अनुभव और अस्पष्ट आवश्यकताओं को जांचने का माध्यम हो सकता है, लेकिन उसे बिना सुरक्षा, प्रदर्शन और रखरखाव पर विचार किए अंतिम उत्पाद मान लेना गलत होगा। पुस्तक का उपयोगी योगदान विधियों को विचारधारा के संघर्ष की तरह न देखकर परियोजना की जरूरत से जोड़ना है। दल का आकार, जोखिम, नियमन, समय सीमा, तकनीकी अनिश्चितता और उपयोगकर्ता उपलब्धता सभी चयन को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी इससे यह सीख सकता है कि अच्छा विश्लेषक किसी लोकप्रिय पद्धति को यंत्रवत लागू नहीं करता, वह नियंत्रण, गति, गुणवत्ता और भागीदारी के बीच उचित संतुलन बनाता है। अंत में कार्यान्वयन, सुरक्षा और बदलती तकनीक को विकास के बाद का काम न मानना। पुस्तक की समकालीन उपयोगिता इस बात में है कि वह प्रणाली को डिजाइन के साथ समाप्त नहीं मानती। कार्यान्वयन में परीक्षण, उपयोगकर्ता प्रशिक्षण, दस्तावेजीकरण, डेटा रूपांतरण और नई प्रणाली पर संक्रमण जैसे निर्णय शामिल होते हैं। यदि पुरानी प्रणाली से नई प्रणाली में परिवर्तन की योजना कमजोर हो, तो अच्छा डिजाइन भी संचालन में बाधा पैदा कर सकता है। परीक्षण का उद्देश्य केवल त्रुटियां पकड़ना नहीं, बल्कि यह जांचना है कि समाधान तय आवश्यकताओं, व्यावसायिक नियमों और उपयोग की परिस्थितियों को पूरा करता है या नहीं। सुरक्षा भी इसी पूरे जीवन चक्र का विषय है। पहुंच नियंत्रण, डेटा संरक्षण, जोखिम की पहचान और संचालनात्मक जिम्मेदारियां डिजाइन के प्रारंभिक निर्णयों से जुड़ती हैं। बाद में जोड़ी गई सुरक्षा अक्सर अधिक महंगी और कम प्रभावी होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग और मोबाइल अनुप्रयोगों के संदर्भ में यह बात और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि डेटा, उपयोगकर्ता और सेवाएं पारंपरिक कार्यालय सीमाओं से बाहर हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में सुविधा, पहुंच, विश्वसनीयता और सुरक्षा के बीच संतुलन आवश्यक है। पुस्तक उभरती तकनीक को केवल आकर्षक शब्दावली की तरह नहीं, बल्कि विश्लेषक के निर्णय परिवेश के हिस्से के रूप में रखती है। प्रणाली लागू होने के बाद रखरखाव, सुधार और बदलती जरूरतों के अनुरूप अनुकूलन चलते रहते हैं। इस प्रकार सफलता का वास्तविक माप तैनाती नहीं, दीर्घकालिक उपयोगिता, नियंत्रण और परिवर्तन संभालने की क्षमता है। निष्कर्ष में, सिस्टम्स एनालिसिस एंड डिजाइन उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो सूचना प्रणाली, व्यवसाय विश्लेषण, परियोजना कार्य या प्रारंभिक सॉफ्टवेयर विकास की समझ बनाना चाहते हैं। यह नए विश्लेषकों, आईटी प्रबंधकों और उन पेशेवरों के लिए भी प्रासंगिक है जिन्हें तकनीकी दल और व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के बीच संवाद करना पड़ता है। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह समस्या परिभाषा से लेकर कार्यान्वयन और रखरखाव तक निर्णयों की श्रृंखला दिखाती है। पाठक यह समझ पाता है कि किसी प्रणाली की असफलता केवल कोड की त्रुटि नहीं हो सकती, बल्कि अस्पष्ट आवश्यकताओं, कमजोर व्यवहार्यता अध्ययन, अनुपयोगी इंटरफेस, अपर्याप्त परीक्षण या परिवर्तन प्रबंधन की कमी से भी पैदा हो सकती है। समान विषय की कई पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर इसके शिक्षण उन्मुख, चरणबद्ध और व्यवसाय संदर्भित प्रस्तुतीकरण में है। यह केवल तकनीकी संरचनाओं की सूची नहीं देती, बल्कि विश्लेषण, मॉडलिंग, उपयोगकर्ता भागीदारी और परियोजना पद्धति को एक ही विकास अनुशासन में रखती है। माइंडटैप संसाधनों के साथ इसका अभ्यास केंद्रित स्वरूप अवधारणाओं को लागू करने की दिशा देता है। हालांकि यह किसी एक विशिष्ट प्रोग्रामिंग भाषा या गहन वास्तुशिल्प विशेषज्ञता का विकल्प नहीं है। इसकी ताकत उस आधारभूत दृष्टि में है जो पाठक को सही प्रश्न पूछना, विकल्पों का मूल्यांकन करना और संगठनों के लिए उपयोगी। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।